ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தோ பச்சா கேல்தா கேல்தா பாலக் தோட் ரே தோ உன் பாவ் கி ஠ோக்கர் லகி வோ அங்கேடி கிர கை கிர கை தோ பச்சே டர கே. और डर के बड़े जोर से बच्चे ने चिल्लाया, माँ. तो माँ बिल्कुल भीतर काम कर रही थी रसोई में. उसने जैसे अपने बालक की चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो हाथ का काम जैसे का तैसा छोड़कर तुरंत बाहर दौड़ी और दौड़ करके उसने अपने बच्चे को गले से लगाया और उसके सारे अंग देखने लगे कि कहीं जला तो नहीं, इसकी कोई हानि तो नहीं हुई. उसके आंसू पोंछे, उसे हृदय से लगाया, पुचकारा, प्यार किया, उसे कुछ खाने को दिया. तो बच्चे ने कुछ शांत हो गया, भूल गया. पर बाल बुद्धि थी, बुद्धि में ये बात आ गई कि माँ को जब बुलाना हो जल्दी से तो उसे जोर से आवाज लगानी चाहिए, माँ माँ. तो माँ दौड़ के आ जाती. बालक को एक तरीका मिल गया और बच्चा दूसरे दिन भी बड़ी जोर से आवाज लगाता है, माँ माँ, चिल्ला चिल्ला के माँ माँ जब करने लगा तो माँ कुछ आई नहीं. और कुछ देर लगाकर जब माँ आई तो आते ही माँ ने बालक को डांटना शुरू कर दिया, क्या चिल्ला रहा है माँ घर से करके. बच्चे ने कहा, माँ कल तो तू एक बार मैंने माँ कहा था तो तू दौड़ के चली आई, पर आज तो इतनी बार तो इतनी देर से आई और उसके बाद ऊपर से मुझे डांट रही है. तो बच्चे ने की बात सुनकर माँ ने कहा कि बेटा, मैं बहुत अच्छी तरह से तुझे जानती हूँ कि तू कल कैसे बुला रहा था और आज कैसे बुला रहा है. तेरी आवाज का जो फर्क है ना, वो मुझे मालूम है. तो नारायण इसी तरह से बहुत ये प्रार्थना करो, मैंने कहा भगवान से. तो प्रार्थना आप कैसे करते हैं ये फर्क भगवान को बहुत अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि उसी के हम सब पैदा किए हुए हैं. एक नूर से सब जग जम गया, एक ही नूर से सारा जगत उत्पन्न हुआ है. इसलिए वो जगत पिता हैं, जगत माता हैं. तो वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम उनको याद करते हैं, उनके चरणों में पुकार करते हैं, तो वो पुकार हमारी कहाँ से होती है, उसमें कितनी सत्यता है और सत्यता के साथ कितना उसमें समर्पण के है और कितने समर्पित भाव से, समर्पण के साथ, कितने विश्वास के साथ, कितनी आस्था के साथ और कितनी गहराई से, ईमानदारी के साथ वो आवाज हमारी निकल रही है, उसको बहुत अच्छी तरह से वो समझते हैं. इसलिए हमारी प्रार्थना में समर्पण हो और समर्पण के साथ उस जितनी समर्पित भाव से, समर्पण से हमारी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना होगी, वो प्रार्थना भगवान को स्वीकारी होती है. भगवान निश्चित रूप से, भगवान तक यदि कुछ पहुंचती है तो हमारे हृदय की पुकार पहुंचती है. वो आवाज सुन करके, वो हृदय की पुकार सुन करके भगवान, क्योंकि हमसे परमात्मा कहीं दूर तो नहीं है. बहुत से लोग कहते हैं भगवान का नाम लेकर बुलाने से क्या फायदा, क्या फायदा भगवान का नाम लेकर रोज रोज बुलाने से, क्या भगवान सुनते थोड़ी हैं. किसी ने कहा कि नहीं, भगवान पुकारने से, केवल नाम लेने से मिल जाते हैं. बोले कहा कि नाम लेने से कैसे मिल सकते हैं, कैसे पुकारने से मिल सकते हैं. पानी 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 करते रहो तो पानी नहीं मिलता, तो भगवान कहाँ से मिल जाएंगे. तब उसका ये समझ में आया कि वास्तव में पानी 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 चिल्लाने से कदाचित पानी नहीं मिल सकता. क्यों नहीं मिल सकता, कि पानी एक तो हमारे से बहुत दूर है और दूसरा जड़ भी है. वहां दूरी भी है और जड़ता भी है. पर भगवान के लिए ये दोनों बातें नहीं है, न तो वो हमसे दूर है और न पानी के समान जड़ है. ये दोनों बातें नहीं, इसलिए वो सुनते हैं क्योंकि वो चेतन है. और दूर भी नहीं है, वो हमारे पास है, हमारे अंदर है, हमारे सामने है, हमारे दाएं हैं, बाएं हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, आगे पीछे बाहर भीतर, वो सर्वत्र सर्वव्यापक हैं। इसलिए वो हमारी आवाज को सुनते भी हैं, और सुनते हैं तो साक्षात्कार भी होता है, सामने भी आते हैं, वो हमारी बात मानी भी जाती है, परंतु उसमें हमारा समर्पण कितना है, कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी सच्चाई के साथ हम उनको याद कर रहे हैं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है नारायण। इसलिए उपनिषद यही बात बार बार हमें कहती है कि हम भगवान से प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि हृणमय पात्रेण, यह जो हृणमय पात्र है, जो स्वयं से नहीं मिटता, सोने का पात्र जला करके इसे मिटाया, और सब चीजें तो जल जाती हैं, परंतु सोना कभी जलता नहीं है। अहंकार जो हमारा स्वाभाविक अहंकार है, उस स्वाभाविक अहंकार, आरोपित अहंकार तो मिट जाएगा, परंतु जो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर में है, वो हमारे से छूटता नहीं है, वो जाता नहीं है, वो रहता ही, और उस अहंकार का पात्र रहेगा तो उसमें, उसके अंदर संस्कार सूक्ष्म, क्योंकि सात्विक अहंकार, जो सात्विक मैं है, इसीलिए अहंकार भी एक सात्विक है, एक राजस है, एक तामस है, ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, जिनमें से सत्वगुण भी निस्त्रय गुणे सतोगुण से जो उत्पन्न होने वाला, क्योंकि कदाचित ये रजोगुण है करके आप उसे त्याग देंगे, ये तमोगुण है करके पहचान करके आप उसे त्याग देंगे, पर सत्वगुण से, सतोगुण से, सतोगुण का तो कार्य है अच्छे कार्य करना, शुभ कार्य करना, और उन कार्यों का जो सूक्ष्म सूक्ष्म वासना है, वो इतनी अंदर रह जाती है कि वो इतनी जल्दी जाती नहीं। जैसे मान लो कोई आदमी अच्छा काम से, सत्व गुण का भाव है कि आप सुबह दरिद्रियों को दान दें, ये सत्व गुण का कार्य है, और उसके साथ साथ आप स्वाध्याय करते हैं, अच्छा गुण है, और उसके साथ आप ज्ञान के लिए साधन करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, ये अच्छे गुण है, मौन रखते हैं, ये अच्छी बात है, सत्व गुण का लक्षण है मौन रखना, ज्ञानवान व्यक्ति मौन रखे, और जिसके अंदर समर्थ है, धनवान है, समर्थ है, पर समर्थ होने पर भी वो शांत रहता है, तो ये बहुत बड़ी बात, सत्व गुण का लक्षण है। और उसी तरह से कहा गया है कि जो व्यक्ति युवान अवस्था है और युवा अवस्था में अपने लिए संयम का पालन करता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी व्यक्ति में मौन हो, समर्थ व्यक्ति शांत हो, और युवा व्यक्ति के अंदर में तप की भावना हो, और दरिद्रों को दान देने में हो, तो ये सब तो सत्वगुण के लक्षण हैं। और इस प्रकार ये सत्वगुण के लक्षण, इससे, इन लक्षणों से, सत्वगुण का पालन करते हुए आपके अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई ये आप कार्य करेंगे तो मैं ये करता हूं, कर्तापन की कहीं न कहीं कोई न कोई भावना आ ही जाएगी। तो जहां ये मैं करने वाला हूं, ऐसा अहंकार मैं वृत्ति आई नहीं कि वहां हमारे लिए बंधन का कारण बना ही बना। वहां तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि रजोगुण और तमोगुण को छोड़ना तो कठिन नहीं है, उसे तो धीरे धीरे आप समझ के त्याग सकते हैं, पर सत्वगुण को त्याग करना कठिन हो जाता है नारायण, क्योंकि ये सब तो करने के लिए ही कहा गया है भाई, इन सब को दान करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, नियम पालन करना चाहिए, संयम करना चाहिए, पर करना चाहिए करते करते इसका सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर आ ही जाता है। उस सूक्ष्म अहंकार को कैसे मिटाएं, वो कैसे छूटे, उसके लिए भगवान से प्रार्थना है, उसी के लिए प्रार्थना है कि ये सूक्ष्म जब तक सात्विक अहंकार से भी हमारी निवृत्ति नहीं होगी, सत्कर्म करने से भी अहंकार आ ही जाता है। और आजकल तो ऐसा है कि सत्वगुण थोड़ा सा भी कोई अच्छा काम हुआ तो जब तक हम उसको बहुत अच्छी तरह से गा बजा करके सबको बता नहीं देते हैं, दिखा नहीं देते हैं, तब तक हमको संतोष होता नहीं है कि हमने ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे हैं। तो इससे क्या बढ़ता है? बोले हमारा अहंकार पुष्ट होता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? इससे हमारी अहंकार की अहंकार का परितोष करने के लिए, अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, उसको पोषण देने के लिए, प्रसन्नता के लिए हम करते हैं। तो वही हमारे सत्य दर्शन में सत्य से हमें दूर करने वाला है, सत्य से अलग करने वाला है। इसलिए सत्य के नजदीक हम जा सकें, सत्य में प्रवेश कर सकें, सत्य को दर्शन कर सकें, उससे हमारी रक्षा हो सके, उसके लिए हमें भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए। नारायण यही हृणमय पात्र है, इसी का नाम हृणमय पत्र है, जिसमें बीज हैं। बोले क्या बीज हैं? सद्भाव से नाना प्रकार की आकृतियां, जैसे एक बीज में बट बीज लीजिए, उस बीज के अंदर ऐसे आप तोड़ करके देखेंगे कुछ भी नजर नहीं आएगा, परंतु उस बट के बीज के अंदर वृक्ष भी है, वृक्ष से फल भी है, और फल में उसकी सारी जैसी जैसी उस वृक्ष की आकृति है, सब के सब किसके अंदर में है? उस बीज के अंदर में है। उसी प्रकार जो सत्व सद्भाव है, उस सद्भाव के अंदर, हृणमय पात्र के अंदर आकृति भी विद्यमान है, चिद भाव से इसके अंदर बुद्धि बीज भी है, जिसमें जड़ता, मूर्खता, प्रतिभा ये सब इसके अंदर, और जो जो तीसरा भाव है आत्म भाव जिसको कहते हैं, उसके अंदर अहम का बीज है, और अहम बीज से जिसमें राग और द्वेष ये सब विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार ये हृणमय पात्र के अंदर ये तीनों चीजें हैं विद्यमान है, चिद्भाव भी है, सद्भाव भी है, और प्रियत्व का भाव, प्रियत्व के भाव से इसमें अहंकार, राग और द्वेष भी विद्यमान रहते हैं। इन सब को हटाने के लिए इन तीनों से बना हुआ, तीनों भावों से युक्त क्या है? बोलिए हिरण्यमय पात्र है। इसीलिए कहा ये सोने का जैसा पात्र, जो जल नहीं रहा है, जन्म जिसके अंदर विद्यमान है, इसका ढक्कन जो आज आवरण है, आवृत है, ढका हुआ है, आच्छादन है। बोले किसका? इस आच्छादन को, इस पात्र के आच्छादन को हटा दीजिए, ताकि मैं उस सत्य को देख सकूं, सत्य का दर्शन कर सकूं। उसके लिए भगवान से ये बात समझ में आ जाए कि मेरा सूक्ष्म अहंकार, जिस सूक्ष्म अहंकार में ये अहंकार का ही पात्र है, और इस अहंकार के भीतर सद्भाव भी है, चिद्भाव भी है, प्रियत्व का भाव भी है, ये तीनों भाव मेरे इस अहंकार में विद्यमान है, और अहंकार रूपी हिरण्य का पात्र है, और इस हिरण्य पात्र के दर्शन हटे बिना हमें उस सत्य का दर्शन हो नहीं सकता। तो अहंकार को मिटाने के लिए भगवान से प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषणा पावणो सत्य धर्माय दृष्टये, मैं सत्य धर्म का दर्शन कर सकूं। मैंने जीवन में धर्म का पालन किया, धर्म पालन करने के लिए होता है, और सत्य को जानने की जिज्ञासा होती है। सत्य क्या है ये जानने की एक तड़फ है, और जीवन में जो आचरण है, हमें रहना कैसे चाहिए, हमें जीवन जीने की एक पद्धति है, और जो जिस प्रकार रहने का हमें आचरण करने का आदेश किसके द्वारा मिला? बोले वेद में दो भाग हैं, एक निषिद्ध, एक कर्म वो है जिनका निषिद्ध किया, और एक कर्म वो है जिनको करने के लिए कहा गया। जिन्हें वेद करने की हमें अनुमति देते हैं, आज्ञा देते हैं, उस कर्म का नाम धर्म है। और उस धर्म का पालन करते हुए कहा कि सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, ये धर्म है। सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए, ये अधर्म हो गया। इस प्रकार हमें जीवन में क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, करने योग्य क्या कार्य है, जो करने योग्य जो बातें बताई गई हैं, बोले उन योजना करना न करना ये किसके लिए है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये बात किसके लिए लागू होती है, बोले सिर्फ मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए ही ये बात, क्योंकि और योनियों में ये सुविधा नहीं है। अन्य इसीलिए अन्य योनियों को भोग योनि कहा गया, यहां तक कि देव योनियां भी केवल प्रारब्ध भोग भोगने के लिए उनके पास भी एक व्यवस्था है कि वो केवल भोग ही सकते हैं, कुछ करना चाहें तो करने के लिए उनके पास ये अधिकार नहीं है। और इसी तरह से अन्य योनियां भी हैं जो केवल सुख और दुख को, पाप और पुण्य को केवल भोग सकती हैं, परंतु मनुष्य ही एक ऐसा है जो प्रारब्ध को भोगता हुआ, भोग को भोगता हुआ वो नवीन कुछ करने का अधिकार रख सकता है। तो इसीलिए इस मनुष्य योनि को कर्म योनि का, तो हमें इस जीवन में आकर क्या करना और क्या न करना ये बात पहले अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बोले करणीय अकरणीय को समझने के लिए हमारे यहाँ विद्या अध्ययन किया गया और अच्छी तरह से सीखना चाहिए। उसमें यम नियम सदाचार का पालन करते हुए सद आचरण पूर्वक गुरु चरणों में बैठ करके भली भांति ये समझ लिया, धर्म का पालन कर लिया और धर्म में आरूढ़ होकर के फिर सत्य को, सत्य की जिज्ञासा बनी और सत्य की जिज्ञासा बन करके सत्य को जानने के लिए, देखने के लिए हम आगे बढ़े। परंतु बात यह है कि हमने अपने सद आचरण से व्यष्टि के जो हृणमय पात्र है, हमारे अंदर अहंकार का पात्र है, मैं जो एक स्वाभाविक रूप से है और एक आरोपित रूप से है, जो आरोपित अहंकार है वो तो धर्म का पालन करने से धीरे धीरे वो अहंकार तो हट गया, परंतु जो स्वाभाविक अहंकार है, जो बच्चा जन्म लेने के साथ मैं हूं, जो अपनी मैं उसके अंदर विद्यमान है, मैं हूं ऐसी जो अनुभूति है, तो हूं की जो अनुभूति है जिसे वो हूं अनुभव कर रहा है, वो हूं तो कौन हूं प्रश्न है, वो कौन हूं जिसे वो मैं कह रहा है, वो कौन, मैं कौन, तो ये जो मैं कौन है इसे वो नहीं जान पा रहा है। मैं शरीर, मैं अमुक जाति, अमुक वर्ण, जो ये बाहर से कहा गया और उस बच्चे को कहा गया कि बेटा तुम ब्राह्मण हो, तो बच्चे ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ये जो मैं था ये मैं तो आरोपित मैं था, उसने ब्राह्मणत्व तो अपने पर उस बच्चे पर आरोपित कर दिया गया और बच्चे ने वो आरोपित मैं को, ब्राह्मणत्व तो को अपना लिया और सत्संग में आकर के सतग्रंथ को पढ़ करके वो समझ गया कि ये देह है और देह पर ये धर्म आरोपित किए गए हैं और न मैं ये शरीर हूं और न ये धर्म हूं, न ब्राह्मण हूं, न वैश्य हूं, न क्षत्रिय हूं, न शूद्र हूं, ये मैं कुछ नहीं हूं। उसने देह सहित इसको अलग कर दिया, परंतु फिर उसने कहा कि मैं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं। तब प्रश्न हुआ केवल मैं कौन, फिर मैं कौन हूं, तो अब वो इसको नहीं जान पा रहा है, उस मैं का अनुभव नहीं कर पा रहा है, तब ऐसे समय पर उसके हृदय से ये प्रार्थना होती है कि हे पूषा भगवान, हे जगत का ईश्वर, जगत का पोषण करने वाले परमात्मा, जो सबका पोषण कर रहे हैं, सबको पुष्ट कर रहे हैं, सबका रक्षण कर रहे हैं, जो स्वयं पूषा भगवान कहते हैं सूर्य को, जो सूर्य अत्यंत प्रकाशमय है, ज्योतिर्मय है, जो ज्ञान युक्त है, जो है जिसकी रश्मियां सबको प्रकाशित कर रही हैं, तो उससे प्रार्थना की कि आप मेरा ये आवरण, जो आवृत है जिससे ढका हुआ है, इस आवृत को हटा दीजिए कि ताकि मैं उस सत्य का दर्शन, सत्य को प्राप्त कर सकूं। तो ये आवरण कैसे छूटे, बोले उसकी प्रार्थना से। इसलिए साथ में क्या होनी चाहिए, रोज भगवान से बैठ करके हृदय की गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से यदि आप सत्य को जानना चाहते हैं तो उसकी प्रार्थना करें। और प्रार्थना में शरणांगति का भाव, समर्पण, अपने मेरा। अच्छा, एक बात मैं हमेशा कहा करती हूं कि आखिर हम, हमारे हाथ में है भी क्या, हम क्या कर सकते हैं। यदि आप वैसे आप सोचें तो परवश जीव स्वस भगवंता, जीव यदि हम सामान्य रूप से समझे, एक जीव भाव से सोचें, तो जीव तो उमा दारुण योषिद की नाही, सभी नचावत राम गुसाई। सबको भगवान की माया नचा रही है। माया क्या है, बोली ये भगवान की के अधिष्ठान में रहने वाली, भगवान के आश्रित रहने वाली माया है। और दूसरा, भगवान के आश्रित रहने वाली कौन है, बोले भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति भी भगवान के आश्रित है, भगवान से ही है। माया भी आश्रित है, माया तो सकुचाती है। माया बोले जैसे किसी कुल वधू के द्वारा कोई अपराध हो जाए, घर की बहू से अपराध हो जाए और वो अपराध उसके पति को मालूम पड़ जाए, तो वो अपने पति के सन्मुख जाने पर मन में संकुचन करती है, सकुचाती है। ऐसे ही माया तो उस परमेश्वर के नजदीक जाने पर संकोच करती है, परंतु भक्ति संकोच नहीं करती। भक्ति में वो संकुचन नहीं है, भक्ति में प्रसन्नता है। तो इसलिए भक्ति, क्योंकि भक्ति भगवान को प्रिय है, इसलिए वो उसमें ये संकोच नहीं है। बद है दोनों उसके आश्रित। तो इसी तरह से यहाँ एक अहंकार जो माया से युक्त है, जो अज्ञान से है, अर्थात संसार की जिसे हम माया से कहते हैं, माया से युक्त मैं है, और दोनों हैं उसी परमात्मा के अधीन अहं के, और दूसरा भक्ति के समान जो प्रिय है, मैं के आश्रित है, मैं रूपी परम, मैं बुद्धि में है, और दोनों किसके आश्रित है। इसीलिए गुरुजन कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि जो महतत्व है माने अव्याकृत प्रकृति, और जो प्रकृति है, प्रकृति और अव्याकृत प्रकृति, अव्याकृत प्रकृति से जो आवृत है, मतलब जिस अव्याकृत प्रकृति जिसको आश्रित बना करके चलती है, दोनों रहते हैं किसके हैं, ईश्वर के ही अधीन है। तो ईश्वर क्या है, बोले जो स्वयं हृण गर्भ के समान है, सूक्ष्म हृणमय पात्र जिसको कहा। ईश्वर का एक नाम है हृण्य गर्भ। तो हृण्य गर्भ माने सोने के समान, जैसे उस जिसके अंदर सब कुछ रहता है, सब कुछ रहता है, तो अनंत उसमें अनंत अनंत सृष्टि के संस्कार बीज हृण्य गर्भ के अंदर रहते हैं। तो हृण गर्भ से ही ये सकल सृष्टि उत्पन्न होती है। तो उसी भांति हमारी बुद्धि के अंदर जो सद्भाव रूपी सूक्ष्म अहंकार है, उसमें ही ये हमारा संपूर्ण कर्म, वासना, आकृति, बुद्धि, जड़ता, प्रियता, सब कुछ उसी के अंदर विद्यमान रहती है नारायण। तो इसलिए उस सूक्ष्म जो अत्यंत सूक्ष्म अहंकार है, सहज शब्दों में कहेंगे तो उस सूक्ष्म अहंकार को कैसे मिटाया जाए, कैसे वो समाप्त हो, जिसमें जन्म जन्मांतर के वो सब मिटे रहे हुए हैं, तो कहा कि उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। और हमारी जब प्रार्थना ईश्वर के पास पहुंचती है तो परमात्मा स्वयं द्रवीभूत होकर के, स्वयं दयावान होकर के, द्रवित होकर के ये द्वार खोल देते हैं और सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, सत्य का दर्शन हो जाता है। भगवान की कृपा से इसे आत्मा लभते, आत्मा की प्राप्ति आत्मा के ज्ञान से ही होती है, ऐसा कहा गया है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान।